ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्याण पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया और वंचित समुदायों के 1,00,000 उद्यमियों के लिए ऋण सहायता को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और स्वच्छता कर्मियों सहित वंचित वर्गों के विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की। प्रधानमंत्री ने नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम नमस्ते के तहत सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों को आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड और पीपीई किट वितरित किए। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं का शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली मेट्रो के 4th चरण के तहत 2 गलियारों को मंजूरी दे दी। बैठक के बाद नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि दोनों गलियारों की कुल लागत 8,400 करोड़ रुपए होगी। इसका खर्च केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियां उठाएंगी। लाजपत नगर साकेत जी ब्लॉक मेट्रो लाइन 8.3 किलोमीटर लंबी होगी और इसमें 8 स्टेशन होंगे। दिल्ली मेट्रो की ग्रीन लाइन का विस्तार करके इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक 12 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बनाई जाएगी। मंत्रिमंडल ने भूटान को पेट्रोलियम, तेल, लुब्रिकेंट और इससे जुड़े उत्पादों की आपूर्ति के लिए दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को स्वीकृति दे दी। मंत्रिमंडल ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के संचालन में सहयोग के बारे में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अंतर सरकारी रूपरेखा समझौते को भी आज मंजूरी दे दी। हरियाणा में मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम के बाद नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज विशेष विधानसभा सत्र में विश्वास मत जीत लिया। सदन में करीब 2 घंटे की चर्चा के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ध्वनिमत से विश्वास मत प्राप्त कर लिया। इस बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल विधानसभा सीट से त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व की ओर से जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी वे उसे और अधिक जिम्मेदारी से निभाएंगे। भाजपा ने अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 60 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू मुक्तो से, उप मुख्यमंत्री चाउना मीन को चौखाम सीट से और विधानसभा अध्यक्ष पासंग दोरजी मेचुका सीट से उम्मीदवार हैं। राज्य सरकार का कार्यकाल इस वर्ष 2 जून को समाप्त हो रहा है। राज्य में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी होंगे। भारत इटली संयुक्त रक्षा समिति की 10वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने रक्षा, औद्योगिक और सैन्य सहयोग के व्यापक मुद्दों पर चर्चा की। बैठक का उद्देश्य रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ाना है। भारत और इटली ने अक्टूबर 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की इटली यात्रा के दौरान रक्षा सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने आज नई दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया। सरकार ने 4 महीने की विशेष योजना के अंतर्गत दुपहिया और तिपहिया वाहन खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। श्री पांडेय ने कहा कि ये प्रोत्साहन योजना कार्बन उत्सर्जन करने और इलेक्ट्रिक परिवहन को बढ़ावा देगी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने हैदराबाद मुक्ति आंदोलन में प्राण न्यौछावर करने वालों के सम्मान में हर वर्ष 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद को निजाम शासन से मुक्त करवाने में सर्वोच्च बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को ये सच्ची श्रद्धांजलि है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में आकाशवाणी समाचार और दूरदर्शन समाचार की संशोधित वेबसाइट शुरू की। श्री ठाकुर ने संशोधित न्यूज ऑन एआईआर ऐप भी जारी किया। उन्होंने प्रसार भारती प्रसारण के लिए साझा ऑडियो विजुअल शब्द भी जारी किया। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला गुजरात जायंट्स से होगा। मैच शाम 7:30 पर दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल वर्तमान चैंपियन मुंबई इंडियंस को हराकर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।